Awakening with Brahma Kumaris.
Om Shanti. Awakening with Brahma Kumaris में इन दिनों हम बात कर रहे हैं mind matters की. कई सारी बातें जो हमारे मन से जुड़ी थी उनको समझा और कैसे ये बीमारियों में बदल जाती हैं ये भी हमें बात समझ में आई है. आज हम उस विषय पर बात करते हैं जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जिस पर बात की जाती है और बहुत कॉमनली हम उसके ऊपर बात करते हैं, वो है डिप्रेशन, अवसाद. यानी जब भी मन थोड़ा सा उदास हुआ हमें लगता है कि हम डिप्रेस्ड हैं. कभी भी कोई दुखी लग रहा है तो हम सोचते हैं कि वो बड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा है. मंडे ब्लूज की बात होती है, आई एम फीलिंग वेरी लो. ये सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी में बहुत कॉमन है. लेकिन सचमुच में अवसाद या डिप्रेशन क्या है और एक बीमारी कब बन जाता है, इस पर बात करते हैं. हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सत्य शिवानी. आप दोनों का स्वागत. ओम शांति.
ओम शांति.
डॉक्टर शर्मा, यहीं से शुरू करते हैं कि दुखी तो आजकल हम सब हैं और थोड़ा थोड़ा डिप्रेस्ड फील करना या लो फील करना, कुछ हो जाए या कुछ ना भी हो तब भी, लेकिन एक्चुअल में डिप्रेशन क्या है? क्या ये नॉर्मल नहीं है ऐसा लो फील करते रहना?
देखिए, आपने कहा कि दुखी हम सब हैं, क्या दुखी होना जरूरी है? एक ही स्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग रूप से अपना दुख महसूस करेंगे या व्यक्त करेंगे, ये तो सच्ची बात है. हमसे वो लोग जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस में, चैलेंजिंग सिचुएशंस में हैं, वो भी शायद वैसा ना महसूस करें. और हम सो कॉल्ड बाहर की चीजों के होते हुए भी अपने अंदर एक तरह का अभाव महसूस करें. यहाँ पे व्यक्ति टू व्यक्ति में फर्क आ जाता है. हम में से हर व्यक्ति कभी ना कभी थोड़ा सा लो महसूस करता है. कई बार जब बाहर चैलेंजिंग स्थिति होती है तो हमें अपने अंदर विड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है कुछ देर के लिए, उस स्थिति का आंकलन करने के लिए और फिर उस स्थिति को रिस्पॉन्ड करने के लिए. और उस समय में थोड़ा सा अगर स्थिति बहुत चैलेंजिंग है, मान लीजिए किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत आपका क्लोज बीमार है या किसी की डेथ ही हो गई है, या जॉब में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस आ रही हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा कई बार लोग कुछ महत्वाकांक्षाएं जो उन्होंने बना के रखी हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो रोज ही उस चीज का आंकलन करके वो लो महसूस कर सकते हैं. और वो कभी कभार अगर होता है, स्थिति के हिसाब से होता है, थोड़ी ही देर के लिए रहता है और हम सोल्यूशन फोकस्ड होते हैं जिसमें कि हम उस स्थिति में कैसे अपने आप को इस तरह से रिस्पॉन्ड करें कि हम उस स्थिति से निबट पाए. जब वो होती है तो वो एक नॉर्मल इमोशन है और हर सोसाइटी में उस नॉर्मल इमोशन की एक तरह से परिभाषा है. गमी के बाद भी कितने दिन तक इंसान को लो रहना है, पर किस तरह के काम करते रहना है. मान लीजिए उसकी वजह से इंसान खाना पीना बंद कर दे, काम पे जाना बंद कर दे, सोना बंद कर दे और 15 दिन में वो भी डेथ बेड पे पहुंच जाए, वो नॉर्मल नहीं माना जाता किसी भी कल्चर में. तो उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी की जॉब में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप सारा दिन वही चीज बैठ के सोचते रहते हैं और आपकी जिंदगी रुक सी जाती है, या घर में किसी के साथ आपकी टेंशन चल रही है, या बाहरी किसी व्यक्ति के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, लेकिन हर समय आप उसी के बारे में सोच रहे हैं और वही आपका प्रिवेलिंग इमोशन है महीनों तक, तो वो नॉर्मल नहीं है. तो नॉर्मल का मतलब है कुछ देर के लिए, कुछ हद तक, और वो उससे आपको एकदम रुक जाने में नहीं सिद्ध होता, तब वो नॉर्मल है. लेकिन अगर वो बढ़ता जाता बिना किसी बाहरी परिस्थिति के हो जाता सीमिंगली, जो बाहर किसी रूप में नहीं दिख रही, सब कुछ देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है नहीं, मुझे हर स्थिति जो है वो नॉर्मल नहीं लगती, या मुझे डर है कि आगे जाके कुछ खराब ना हो जाए, या मुझे ये लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो जो दिखा रहे हैं वो वैसे नहीं है, या उसे लगता है कि देखने में अभी तो ये चीज ठीक लगती है, शायद थोड़ी देर बाद खराब हो जाए. तो इसका मतलब है कि उसका उस स्थिति का आंकलन थोड़ा ठीक नहीं है, और फिर उसके साथ में अगर वो एज एन इमोशन उदासी महसूस करे, उस इमोशन के साथ साथ अगर उसकी फिजिकल सिचुएशन में फर्क आ जाए, यानी नींद में बहुत फर्क आ जाए, या खाने में फर्क आ जाए, या वेट बहुत लूज कर जाए, या सोशल रिलेशनशिप्स में फर्क आ जाए, यानी वो विड्रॉ करना शुरू कर दे, बातचीत करना बंद कर दे, कॉल्स लेनी बंद कर दे, या रोने लग जाए बिना कारण के, या काम पे जाना बंद कर दे, या उसे लोगों को देख के हमेशा डर लगे, और ये चीज कुछ दिनों से ज्यादा चलती रहे, 2-3 हफ्ते से ज्यादा, और बाहर वाले भी उसकी स्थिति में एक डेफिनेट चेंज महसूस कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। वहां से फिर एक एबनॉर्मल, सिर्फ मूड की नहीं लेकिन एक तरह के डिप्रेशन एज एन इलनेस की शुरुआत हो जाती है।
अब अगर इस स्थिति पे हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंचे, हमारे आसपास वाला कोई पहुंच रहा है, तो क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप?
ज्यादातर लोग एक्चुअली अवेयर नहीं होते। कई बार लोग अवेयर भी हो जाते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, और कुछ लोग एक्सेप्ट करने के बाद भी फिर एकदम डिनाई कर देते हैं, या उसके आसपास वाले जो लोग हैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर देते, क्योंकि कई तरह की मिथ्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। फिर उसी में कि प्रॉब्लम है भी कि नहीं भी है, है तो बहुत छोटी है, चलो अपने आप ठीक हो जाएगी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को होता है, वगैरह वगैरह। देखिए, डिप्रेशन को भी अगर हम और ही बीमारियों की तरह समझें, खास तौर पे जो सीवियर डिप्रेशन है, जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन कह सकते हैं, जो कि आमतौर पे करीबन 2 हफ्तों से ज्यादा सिवियरिटी के साथ रहता है, जिससे उस व्यक्ति के सिर्फ मूड में नहीं लेकिन उस व्यक्ति के इंटरेक्शंस में, उसके मूड में, उसकी फिजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, उसके काम पे और उसकी सोशलाइजेशन पे, इन सब पे असर पड़ता है इकट्ठा। तो ऐसे में उसको माना जाता है कि ये एक डिसऑर्डर है जिसको कि ठीक करना जरूरी है, और हर डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं है दवाइयां। जैसे कि और फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर हमारे शरीर में केमिकल्स में बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से हम पूरे शरीर में उसका असर देखते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसमें भी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स के चेंजेस हुए, और उन केमिकल चेंजेस की वजह से उसके हार्ट के ऊपर भी असर पड़ा, उसके मसल्स के ऊपर असर पड़ा, उसके ब्रेन के ऊपर भी असर पड़ा। और अगर डायबिटीज है तो ब्लड शुगर बढ़ी, वो एक केमिकल चेंज है, और उस केमिकल चेंज की वजह से पूरे शरीर के ऊपर, मसल्स के ऊपर भी, उसके ब्रेन के ऊपर भी, उसके नर्व्स के ऊपर भी, उसके हार्ट के ऊपर भी, उसके स्किन के ऊपर भी, हर चीज पर असर पड़ा।
किडनी पर सबसे ज्यादा।
इसी तरह से डिप्रेशन में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, शरीर में भी चेंजेस आते हैं और ब्रेन के अंदर भी चेंजेस आते हैं। आज के समय में ये बात क्लियर हो गई है कि जो डिप्रेशन एज एन इलनेस है, इंक्लूडिंग डिप्रेशन एज एन इमोशन, उसमें हमारे माइंड के कुछ केमिकल्स जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, उनमें बदलाव आते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा देर तक चल रही है, सस्टेन्ड है, तो वो जो बदलाव हैं वो ज्यादा क्वांटिटी के होंगे, ज्यादा लंबे होंगे, और ज्यादा देर तक और ज्यादा शरीर के हिस्सों पर उसका असर रहेगा, क्योंकि बॉडी का हर फंक्शन ब्रेन से रेगुलेटेड है। तो अगर ऊपर से वोल्टेज ही अच्छी नहीं आ रही है तो हमारी सोचने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, चलने फिरने की शक्ति, इच्छा शक्ति, सब पे असर पड़ जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में आप अपनी विल पावर से काम कीजिए।
और इनफैक्ट इट इज यू नो लाइक अगर किसी ऐसे व्यक्ति को हो जाए जो बहुत संबल है, अदरवाइज भी बहुत सारे काम कर रहा है, उसके लिए ये एक्सेप्ट करना कि मेरी विल पावर नहीं है, मैं अपने ही माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा।
अगर कोई बहुत अच्छा एथलीट है और वो कहे कि मैं तो इतना अच्छा हूँ कि मैं बिना खाना खाए हुए भी मैराथन दौड़ सकता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से हमारे ब्रेन को चलाने के लिए जो बाद में इमोशंस के रूप में या थॉट्स के रूप में सामने आता है जिसको माइंड कहते हैं, उसके लिए हमें कुछ उस प्रोसेसेस की जरूरत है और वो प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स की जरूरत है जो कि ब्रेन के अंदर साइमल्टेनियसली लाखों करोड़ों एक्चुअली रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर उसके लिए सब्सट्रेट ही कम है, अगर उसके लिए वो केमिकल्स ही कम है, पीछे से बहुत वोल्टेज ही कम आ रही है तो आउटपुट तो नहीं होगी ना। अच्छी सी अच्छी मशीन को भी पीछे से तो वोल्टेज चाहिए, तो अगर वो वोल्टेज ही नहीं आ पा रही है उस समय में हम और व्यक्ति को कहते हैं तो ज्यादा वोल्टेज यूज कर, अपनी इच्छा शक्ति को और बढ़ा ताकि हर चीज को आप सक्षम रूप से कर पाए, तो उसके लिए उस समय वो पॉसिबल नहीं है। अगर जुकाम ही हो जाए, मुझे थोड़ा सा आज जुकाम है, तो उसमें जो चीजें करने की शक्ति है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर थोड़ी छोटी सी चीज से ही हम इतने इफेक्ट हो सकते हैं तो जो बड़ी चीजें करने के लिए हमको जरूरतें हैं माइंड में, वो जब केमिकल्स ही नहीं बन पा रहे तो उसकी वजह से हम नहीं कर पाएंगे। कुछ समय में उस व्यक्ति से एक्सपेक्ट करना कि वो नॉर्मल से ज्यादा अपनी पावर को लगा के उससे ऊपर उभर के आए, ये बहुत टू मच हो जाता है और लोग नहीं कर पाते, और एक्चुअली इसी वजह से कई बार लोग टूट जाते हैं। तो इन चीजों को पहले तो एक्सेप्ट करना कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, इंसिडेंटली ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे को नॉलेज है, इसके बावजूद भी मैं हो सकता है कभी डिप्रेस हो जाऊं, और ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी सेलिब्रिटीज को हो सकता है जिनके पास सब कुछ है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे फिल्म एक्टर्स हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, किसी को भी हो सकता है। इंसिडेंटली आज के समय में डिप्रेशन हार्ट डिजीज के बाद सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड के रूप में उभर के आ रहा है। डिप्रेशन की वजह से अगले 5 सालों में सबसे ज्यादा लोगों को फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी और उसकी वजह से उनके जीवन पर, उनके काम पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। एंड इंसिडेंटली एक दूसरा रूप भी है कि अगर व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसकी वजह से उसको जो बीमारियां हैं, फिजिकल बीमारियां जिनको कहा जाता है, क्योंकि वो भी माइंड से रिलेटेड है, तो वो कई गुना ज्यादा होंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर व्यक्ति को डिप्रेशन है और उसको छोड़ दे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। सो पहला सॉल्यूशन है कि वो व्यक्ति और उसके आसपास के लोग एक्सेप्ट करें कि कभी भी किसी को भी कुछ देर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जो एक नॉर्मल सैडनेस के इमोशन से अधिक है, और अगर वो अधिक समय तक चल रही है 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा सीवियर रूप में, और अगर उस व्यक्ति की सारी जिंदगी उसकी वजह से इफेक्ट हो रही है, रुक सी रही है, तो वो एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है जिसे और ही प्रॉब्लम्स की तरह ठीक किया जा सकता है।
ये एक्सेप्टेंस सिस्टर शिवानी, आई थिंक वी नीड योर हेल्प हियर।
डिप्रेशन शब्द को ही सुनते ही अपने लिए या अपने घर में किसी और के लिए वी टेक इट एज अ पर्सनल फेलियर। दिस इज माय पर्सनल फेलियर कि मैं, क्योंकि सी आप डायबिटीज को, बीपी को, इसको पर्सनल फेलियर नहीं फील करते, और इसमें तो आज हम कहते हैं लाइफस्टाइल, खाना नहीं, पीना नहीं, टाइम नहीं मिलता, जबकि आज हमें समझ में आता है कि ये सारी जो बहुत सारी और बीमारियां हैं वो भी हमारे स्ट्रेसेस की वजह से, स्ट्रेस भी कितना बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन फिर भी जब हम सुनते हैं कि हमें हुआ या घर में किसी और को हुआ, वी डोंट टेक इट एज अ पर्सनल फेलियर। बट फॉर डिप्रेशन हम बहुत समय बिता देंगे, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अच्छा, हम नेगेटिव नहीं है, हम नेगेटिव सोचते नहीं है, आज दिन तक हम ठीक थे, खुश रह रहे हैं। अच्छा, जीवन में सपोज कोई बात भी नहीं हुई है, यू नो नॉट नेसेसरी कि किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ी सिचुएशन आए और ट्रेजेडी हो तब दे गो इनटू दिस। तो अगर कुछ हुआ ही नहीं तो फिर डिप्रेशन क्यों, हो ही नहीं सकता। तो आई थिंक बहुत महीने तो हम इसी में बिता देंगे
कि उसे हुआ क्या है, हाँ, कुछ तो हुआ नहीं उसके जीवन में,
ऐसे ही उदास है, ठीक हो जाएगा। सो वी आर नॉट इवन रेडी टू टेक द फर्स्ट स्टेप कि हम जाके किसी से राय ले या पूछे, बिकॉज हम अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। बिकॉज पहली बात, वो हमारी हार है नहीं। लाइक वॉट वी अंडरस्टैंड नाउ, वाई आर वी ट्रीटिंग इट एज अ पर्सनल फेलियर, वाई आर वी एबल टू अंडरस्टैंड कि जैसे ये बीमारी, वैसे ये एक और बीमारी, हैड बी क्लब देम ऑल टूगेदर, हमने उनको इकट्ठे नहीं क्लब किया हुआ, क्योंकि बाकी सारी बीमारियां शरीर को होती हैं, यू नो, एंड ये बीमारी मन की है, मतलब एंड फिर इसके साथ हमने जो विजुअल्स देखे हैं यू नो अबाउट मेंटल इलनेसेस, हमारे सामने वो सारे सीन्स आने लगते हैं. फिर इसके साथ जो हमें मीडिया ने, सपोज हिंदी फिल्म्स ने, कि ये फिर पागलपन की तरफ, यू नो, सो वेरी सून यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इमेजेस इन योर माइंड कि वी आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एंड वी से नो वी आर नॉट एंड सो वी क्लोज दैट डोर कि नहीं ये हमें नहीं है. ये हम इंडिविजुअली एंड आई थिंक हरेक, एंड जबकि हमें समझ में आ रहा है कि सेकेंड नंबर पे है ये कार्डियक प्रॉब्लम के बाद, और हमें अभी ये भी समझ में आ रहा है कि आने वाले 5 सालों में इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट ताकि हम उसको बहुत जल्दी हम डॉक्टर के पास जाके राय लेके विल बी फाइन. तो फर्स्ट थिंग टुडे, लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्फ कि अगर मुझे कभी ऐसा फील हो या मेरे आसपास कोई, चाहे वो घर पे चाहे वो वर्क प्लेस पे, बिकॉज सो मच कंपैशन इज रिक्वायर्ड एट वर्क प्लेस, कि वी विल ट्रीट इट एब्सोल्यूटली एज नॉर्मल कि जस्ट अनदर इलनेस एंड ये किसी की पर्सनल वीकनेस या कमजोरी नहीं है. एंड जैसे डॉक्टर अवधेश ने कहा, डोंट पुश देम एट दैट टाइम व्हेन दे कांट डू इट, इट वुड बी सो अनफेयर. यू नो, हमें लगता है कि हम पुश करेंगे और ये ठीक हो जाएंगे, तो हम उस समय पुश कर रहे हैं जब कोई चलने की भी हालत में नहीं है, हम उसको दौड़ने के लिए कह रहे हैं, तो हम शायद ये करने से उनकी उस बीमारी को और बढ़ाएंगे, बिकॉज वो खुद भी करना चाहते हैं, हम भी उनको करने के लिए पुश करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेन तो पड़ेगा ही. सो आई थिंक वो स्टिग्मा पर्सनली हम सब हटाएं कि इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स नॉट अ वीकनेस, एंड जैसे कहा इट कैन हैपन टू एनीबडी, उन्होंने कहा इट कुड हैपन टू अ सेलिब्रिटी, टू एन एक्टर, टू अ ब्यूरोक्रेट, इट कुड हैपन टू अ स्पिरिचुअल पर्सन, इट कुड हैपन जस्ट अबाउट टू एनीबडी. बिकॉज हम जो देखते हैं कि जो लोग यू नो ज्यादातर नॉर्मली पॉजिटिव सोचते हैं, नॉर्मली सब ठीक है, एंड जो अगर कोई स्पिरिचुअल रास्ते पे भी चल रहे हैं, उनके लिए तो एक्सेप्ट करना बाकियों से और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हमें तो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि वो इसमें ये आ जाता है कि मेरी थॉट प्रोसेस गलत है,
एंड आसपास भी तो सब क्या बोलेंगे आपको. यू नो, आसपास इफ आई हैव टू गो एंड टेल समवन टुडे कि मुझे शायद लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट फ्रॉम एवरीबॉडी. मतलब आप मेडिटेशन करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, आपको हो सकता है, तो दैट फियर कि मुझे लोगों से ये सुनने को मिलेगा, आई माइट नॉट टेल एनी वन फॉर वेरी वेरी लॉन्ग. हम बताएंगे ही नहीं किसी को, और अगर किसी और ने भी नहीं कैच किया और हमने भी नहीं बताया, तो शायद कितना टाइम बीत जाएगा जस्ट बिकॉज लोग क्या कहेंगे इस बारे में. सो इट कुड हैपन टू एनी ऑफ अस.
देखिए, हम ये भी जानते हैं कि कुछ परसेंट लोग, उनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, उनकी फैमिलीज में है, तो ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली में है तो हर बच्चे को होगी, लेकिन थोड़ी सी चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली सिवियर डिप्रेशन होने के, खास तौर पे अगर उनकी स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, अगर एज अ पर्सनालिटी वो चीजों को हमेशा एक नेगेटिव रूप से देखने के बचपन से आदि हैं, या उनके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ज्यादा डिफिकल्ट रहे हैं. दूसरी बात कि जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं या जो पोजीशन ऑफ पावर में हैं, वो एक्चुअली दूसरों की ज्यादा प्रॉब्लम्स को रोज झेलते हैं. मेरे जैसा व्यक्ति जो रोज सुबह से शाम तक सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम्स, स्पेशली मेंटल प्रॉब्लम्स को सुनता है, एंड आई एम श्योर कि जितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअलिस्ट हैं फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी रिलीजन, उनको भी तो दूसरों की कई चीजों को बहुत ज्यादा सुनना, समझना, सोल्यूशन देना और अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाना, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एक्चुअली स्ट्रेस है. हाँ, उनकी क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, तो वो काफी हद तक इन चीजों को थोड़ा सा बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन वो भी तो एक प्रोसेस है ना. तीसरी जो सबसे बड़ी बात समझने की है इस एस्पेक्ट में, कि बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं है. बॉडी के हर हिस्से पर माइंड का असर है, और जो हमारे शरीर में हो रहा है वो हमारे ब्रेन और माइंड के ऊपर पूरा असर करता है. उसी ब्रेन के अंदर वही ब्लड है जो कि पूरे शरीर में चल रहा है, उसमें जो केमिकल्स हैं वही पूरे शरीर में जा रहे हैं, तो दोनों का एक फीडबैक मैकेनिज्म है. और अगर इसीलिए कुछ भी शरीर में हो रहा है तो उसका ब्रेन पे असर पड़ता है, उससे हमारी जो आउटपुट है जो कि माइंड है उसके ऊपर असर पड़ता है, एंड इंसिडेंटली अगर सब कुछ ठीक होने के बाद सब कुछ बाहर नॉर्मल है और उसके बावजूद व्यक्ति डाउन महसूस कर रहा है तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि अगर बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वो लो महसूस कर रहा है इट इज स्टिल अ माइल्डर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन लेकिन अगर बाहर सब कुछ ठीक है और आप सडनली बहुत लो महसूस कर रहे हैं देन इट इज समथिंग विच इज मोर प्रॉब्लमेटिक मे बी मोर सिवियर जिसके लिए आपको जरूर जल्द से जल्द मदद की जरूरत पड़ती है।
मैक्सिमम लोग जो हैं वो डिप्रेशन की का इलाज नहीं कराना चाहते क्योंकि बहुत सारी मिथ्स सामने आती हैं लाइक हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन हैं लंबा इलाज चलता है डिप्रेशन से बाहर निकलते देखे ही नहीं हमने लोग डिप्रेशन सालों साल चलता है सारा काम रुक जाता है नॉर्मल व्यक्ति जिंदगी जी नहीं सकता नॉर्मल चीजें कर ही नहीं पाता
और ये भी फील करते हैं कि दवाई लेने से नींद ज्यादा आती है
ये जो फीलिंग कि डिप्रेशन का इलाज सिर्फ मेडिकल है पहले तो वो भी गलत है डिप्रेशन का इलाज जहां जरूरत पड़े वहां मेडिकल यानी मेडिसिन के द्वारा और बहुत सारा काम उसके बाद जब व्यक्ति कर पाए तो अपने ऊपर या जस्ट डे टू डे सिचुएशंस के ऊपर या अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं तो उनके ऊपर जिनको थेरेपी बोलते हैं थेरेपी का मतलब है कोई व्यक्ति जो उस समय बाहर सिचुएशन में है वो आपके साथ उस सिचुएशन से नहीं जूझ रहा क्योंकि वो उस चीज को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पा रहा है वो आपको अल्टरनेट्स दे और उन अल्टरनेट्स के द्वारा आप अपनी लाइफ सिचुएशन को बदल सको अपने थिंकिंग पैटर्न को बदल सको उस समय के लिए या फ्यूचर के लिए मेडिसिन से पहले एक स्टेप आ जाता है कि कॉज क्या हो सकता है डिप्रेशन का कई बार डिप्रेशन के कॉज एक्चुअली फिजियोलॉजिकल होते हैं यानी शरीर में कोई और बीमारियां हैं थायराइड की कमी है कुछ और हार्मोन्स की कमी है कई बार विटामिन्स की कमी आज के समय में खासतौर पे इंडिया में बड़े शहरों में विटामिन डी की विटामिन बी की इस तरह की कमियां या कोई व्यक्ति पूरी तरह से कई महीनों से सो नहीं रहा है या उसका काम जो है उसकी वजह से उसको सही टाइम पे खाने को नहीं मिल पा रहा और उसकी वजह से उसके अंदर कुछ कमियां हैं कुछ मेडिसिन जो कि दूसरी बीमारियों के लिए दी जाती हैं, खासतौर पे एंटी हाइपरटेंसिव उनकी वजह से ऐसा हो सकता है कुछ लोग जिनको कि कैंसर इनिशियल स्टेजेस में है उनको डिप्रेशन जैसी पिक्चर हो सकती है वायरल फीवर अगर बहुत लंबे अरसे तक चला है तो उससे डिप्रेशन जैसी एक सिचुएशन व्यक्ति महसूस कर सकता है अगर स्ट्रोक हुआ है किसी व्यक्ति को तो उसकी वजह से जो ब्रेन को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही उसकी वजह से डिप्रेशन भी साथ में आ सकता है जो एल्डरली हैं उनमें जो उनकी बीमारियां हैं उनके साथ में डिप्रेशन हो सकता है खासतौर पर इलनेस कॉल्ड डिमेंशिया जो एपिलेप्सी वाले लोग हैं उनमें खासतौर पर जब लंबे समय से वो चलती है तो उसकी वजह से डिप्रेशन आ सकते हैं तो वो सब चीजें तो नहीं है और एक्चुअली एक तरह से अगर आप देखें तो ये चीज प्रूव करती है कि अगर फिजिकल सिचुएशंस फिजिकल इलनेसेस या मेडिसिन फॉर दोस इलनेसेस की वजह से डिप्रेशन हो रहा है तो ये भी एक तरह से एक फिजिकल तरह की प्रॉब्लम है जिसको जिस लेवल पे टैकल करना जरूरी है दूसरा ये देखने की जरूरत होती है कि मान लीजिए कोई कहता है कि साहब छोड़ दो ना अपने आप ठीक हो जाएगा बाहर की प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा छोड़ देते हैं
उस सिचुएशन से अलग कर दो कहीं और ले जाओ
कहाँ भागते रहेंगे पर अगर चलो कुछ देर के लिए चले भी जाएं तो वापस तो आना है और ज्यादातर जो सीवियर डिप्रेशन है उसमें व्यक्ति की सिर्फ एक सिचुएशन के बारे में नहीं पूरी जिंदगी के बारे में नकारात्मक सोच आ जाती है तो होपलेसनेस हेल्पलेसनेस जो नॉर्मली वो चीज कर सकता है वो भी उसे लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूं तो इसलिए वहां पे उस समय के लिए कुछ समय के लिए उसकी मदद करना ताकि वो बेटर महसूस करे मैं अगर पैरेलल अगेन लूं डायबिटीज का तो अगर ब्लड शुगर किसी की 500 है और उसे कहें कि साहब आप सिर्फ वेट कम कीजिए एक्सरसाइज कीजिए, मीठा खाना कम कर दीजिए, उस समय में वो इमरजेंसी है, उस समय में आपको उस लेवल तक उसको कम करना पड़ेगा कि वो बाकी चीजें कर सके,
लाइफस्टाइल को चेंज कर पाए।
तो वहां यहाँ पे भी उस व्यक्ति की मदद मेडिसिन के द्वारा इस हद तक कि वो बाकी चीजों को कर पाए, बाकी चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन उस समय पर जबकि वो उनको करने में सक्षम हो। मेडिसिन अगर सही तरीके से दी जाए तो उनकी वजह से व्यक्ति को लेटे रहने की, कुछ काम ना कर पाने की हालत हो जाए, वो सही नहीं है। एक्चुअली कई बार हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों को अगर साइड इफेक्ट्स हुए हैं और वो जाके प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्टर की सलाह लेके इन सब प्रॉब्लम्स को बताकर अगर बात करें तो आज के समय में कई तरह की मेडिसिन है, इंक्लूडिंग एंटी डिप्रेसेंट्स, जिनको की उस व्यक्ति की लाइफ के हिसाब से ठीक किया जा सकता है ताकि उसको इफेक्ट आए लेकिन साइड इफेक्ट कम आए या ना के बराबर आए। इंसिडेंटली इनका असर एक ही दिन में नहीं आता, आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते लगते हैं जिसमें थोड़ा सा असर आना शुरू होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति महीनों से दवाई ले रहा और उसको कोई असर नहीं आ रहा या उसको साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब गलत दवाई है या वो सही प्रकार से नहीं ले रहा, जो भी कारण है। डिप्रेशन आज के समय में कम्प्लीटली मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है अगर सही इलाज हो, और बिगिनिंग में फर्स्ट स्टेप सीवियर डिप्रेशन के लिए चाहे मेडिसिन हो, लेकिन उसके बाद सोच में, बाहरी हालात से डील करने में, अपनी जिंदगी का पर्पस बदलने में, बाकी लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ाने में, लाइफस्टाइल को बेटर करने में, उसमें भी डिप्रेशन का उतना ही बड़ा रोल है, लेकिन appropriately, जब उस सिचुएशन से वो व्यक्ति सीवियर सिचुएशन से निकल के उस सिचुएशन में जहाँ समझ पाए, कर पाए, करने की इच्छा भी हो और करने की ताकत भी हो।
If feeling low becomes our prevailing emotion for months, situations do not appear normal to us, fear that something might go wrong, feel people are not as they appear, then it is not normal. Along with this, if food and sleep patterns are disturbed, do not feel like meeting people or going to work, that is the beginning of depression. Chemicals called neurotransmitters in the brain undergo a change during depression. Long periods of depression without treatment will mean more changes in the chemical balance and a greater influence on the body, since the body functions are regulated by the brain. Today, depression is the second largest illness worldwide after heart disease. In the next 5 years, depression will be the cause of maximum physical and mental problems, which will affect our family and professional life. Depression is not a personal failure or an emotional weakness. It can happen to absolutely anyone, and sometimes even without an external crisis. It can happen due to a genetic disposition or as a result of some hormonal imbalance or vitamin deficiency.
If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999559 660. Om Shanti.